भारत और ऑस्ट्रिया अपने संबंधों को और मजबूत करने को लेकर आशान्वित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के बीच आज वियना में इसको लेकर मुलाकात होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति और वहां के उद्योगपतियों के साथ भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के अलावा वैश्विक चुनौतियों पर भी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। 1983 में इंदिरा गांधी के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला ऑस्ट्रिया दौरा है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस का दौरा किया। मंगलवार को उन्हें रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,
सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है।
मास्को में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बताया।
आज ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ में 15% भारत कंट्रीब्यूट कर रही है। आने वाले समय में इसका और ज्यादा विस्तार होना तय है। ग्लोबल पॉवर्टी से लेकर क्लाइमेट चेंज तक हर चैलेंज को चैलेंज करने में भारत सबसे आगे रहेगा। और मेरे तो डीएनए में है चुनौती को चुनौती देना।
जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरा है। सोमवार को कठुआ में सेना की गाड़ी पर हमला हुआ, इसमें 5 जवानों की मौत हो गई। इस पर विपरीत कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता दीपेंदर हुड्डा कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहते हैं,
सभी देशवासियों की एक भावना है कि जिस ये जो आतंकी जो हैं इनको उन्हीं की भाषा में जवाब भी दिया जाए। एक बड़ा चिंता का विषय, डिस्टर्बिंग ट्रेंड एक सामने आया कि जो जम्मू क्षेत्र है, जम्मू क्षेत्र में खास तौर पे जो पीर पांजाल के दक्षिण में जो सारे राजौरी, पुंछ, रियासी, जम्मू, ये जो सारा जो क्षेत्र है, पहली बार ऐसा दिखाई देता है कि आतंकवादियों ने इसको, इस क्षेत्र को अपनी एक्टिविटी का केंद्र बनाया है। लगातार इस क्षेत्र में ये जो सारे घटनाक्रम हो रही है, जो सारे ये इतने इंसिडेंट्स हुए हैं, लगातार इस क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर के लोगों को शांति प्रिय बताते हुए दीपेंदर हुड्डा ने राज्य में जल्दी चुनाव कराए जाने की मांग की।
जम्मू कश्मीर की जनता ने एक बात दिखा दी कि जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं, देश की भावना जुड़े हुए हैं, और 58% मतदान जम्मू कश्मीर में हुआ। तो एक मैं समझता हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों ने ये एक बात रखी है, और कांग्रेस पार्टी का शुरू से इस पर स्टैंड रहा है कि सरकार को वहाँ पे चुनाव कराकर चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों को देनी चाहिए।
लोकसभा चुनाव बीत जाने और केंद्र में नई सरकार का गठन हो जाने के बाद भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं हुआ है। चुनावी परिणाम को लेकर भाजपा और कांग्रेस पार्टी मंथन में जुटे हुए हैं। 13 राज्यों में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला है। इसको लेकर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बारे में कहते हैं,
इंडियन नेशनल कांग्रेस 13 राज्यों में 13 स्टेट्स में जीरो है, जीरो। Not even a single Lok Sabha seat is with Congress party in 13 states. और एक और बात बताना चाहता हूं कि कांग्रेस अपने वोटों पर नहीं जीती है, कांग्रेस रीजनल पार्टी के वोट से वह अपनी ताकत लेती है। हमारे हिंदी में शब्द कहते हैं परजीवी, यानी अपने से नहीं जीते हैं, दूसरे की ताकत पर जीते हैं। अंग्रेजी में शब्द है पैरासाइट्स, ये बेल की तरह लता की तरह चढ़ते हैं, इनको अपने से ताकत नहीं मिलती, ये दूसरे से ताकत लेते हैं।
इधर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में अपनी सीटों को लगभग दुगना करने के बाद आक्रामक विपक्ष की मुद्रा में है। हाथरस भगदड़ हादसे से लेकर मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेर रही है। इस बीच आज हो रहे उपचुनाव में भाजपा और विपक्ष आमने सामने हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर इस समय मतदान चल रहा है। इसमें से 4 सीटें पश्चिम बंगाल की हैं। और अंत में थोड़ी चर्चा भूकंप और बारिश की। महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 आंकी गई है। फिलहाल किसी के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। राज्य में कई जगहों पर इस समय बारिश के चलते भी लोग बदहाल हैं। मुंबई में भी जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है। भारत से आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं विश्वरत्न SBS रेडियो की हिंदी सेवा के लिए।